सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे इसराइल और अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे ताजा विवाद पर, ताजा झड़प पर और उससे पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असर पर। आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अरुण सिंह जी। अरुण जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद, आपके साथ जुड़कर प्रसन्नता हो रही है मुझे।
अरुण जी, सबसे पहले हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अभी जो संघर्ष है मध्य पूर्व में जो चल रहा है उसकी स्थिति क्या है, और अब वहां जो शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है, अली खामेनेई को और उनके आसपास के काफी लोगों को ऐसा बताया जा रहा है, उसके बाद वहां के हालात कैसे हैं?
अभी तो सिचुएशन थोड़ा फ्लक्स में है, हालांकि शिकर के कई नेताओं को खत्म कर दिया गया है ऐसा बताया जा रहा है। पर ईरान में एक सिस्टम है, वहां एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वो एक ग्रुप है जो मिलकर चुनता है कि सुप्रीम लीडर कौन होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी मीटिंग होगी और वो नया सुप्रीम लीडर इसी समय बताएंगे कि कौन है। दूसरा, वहां की जो स्थिति है उसको मजबूती से संभालते हैं वो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को, और वो एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है। तो हालांकि उनके कई नेताओं को भी मारा गया है, तो नया नेता उभर कर आएंगे। हमको देखना होगा कि ईरान में, जैसा कि हम सब देख रहे थे पिछले महीनों में जो कुछ हुआ है, कि कई लोग हैं जो अभी वहां जो सत्ता में है उनके खिलाफ, तो क्या वो अपने को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, नई सत्ता को की स्थापना करने में सफल हो पाते हैं, और नहीं तो अभी जो लोग हैं सत्ता में वो नए चेहरों के साथ उभर के आएंगे। तो अब किस दिशा में है जाएंगे, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, बाहर से अभी कहना मुश्किल है। जहां तक युद्ध की स्थिति है, अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पे आक्रमण तो हो ही रहा है, पर ईरान ने भी इसराइल पे मिसाइल्स भेजे हैं, और ईरान ने गल्फ में कई कंट्रीज पे, यूएई, बहरेन, कतर, कुवैत, वहां पे मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए वहां भी उन्होंने आक्रमण किया है, जवाबी आक्रमण में। और इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि फ्लाइट्स बंद हो गए, एयरपोर्ट पे लोग फंसे हुए हैं, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो शिपिंग है, जैसे भारत के लिए 50% तेल जो हम लाते हैं वो गल्फ से आता है, तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज भी कुछ दिनों के लिए फिलहाल बंद है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा यह सब देखना होगा।
जी, आर्थिक प्रभाव देखें अगर तो भारत के लिए तत्काल तो न हो, लेकिन लगातार जो शिपिंग की बात है, जैसा आपने बताया हॉर्मुज की खाड़ी से ही हमारे पास 50% से ज्यादा तेल एलएनजी आता है, उस पर निर्भर रहने वाले सभी देशों पर काफी असर पड़ने की आशंका है, आपकी क्या राय है?
जी बिल्कुल, चीन पे भी असर पड़ेगा, वो अपने लिए तेल काफी मात्रा में गल्फ से मंगाते हैं, जापान पे असर पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया, तत्काल हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन भी है। अभी हम जैसे पिछले एक दो साल से रशिया से काफी तेल ला रहे थे, अब वेनेजुएला से तेल फिर मिलने की संभावना है, बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका से भी हम तेल ले रहे हैं, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, और जैसा कि रिपोर्ट्स में भी आया है हमारे पास रिजर्व्स भी हैं, तो तत्काल तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हफ्ते दो हफ्ते के अंदर स्थिति संभल जाती है और शिपिंग वगैरह फिर शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अभी एक आशंका तो बनी रहेगी, ये युद्ध किस दिशा में जाता है, लोकल क्या प्रभाव पड़ता है, न सिर्फ ईरान पे बल्कि बाकी अरब देशों में। और जैसा कि आप जानते हैं, करीब 80-90 लाख भारतीय अरब देशों में रहते हैं, वहां काम कर रहे हैं, उनका जो रिमिटेंस भारत को आता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अरब देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यूएई के रूलर है, वो भी आए थे भारत हाल में, और उनके साथ इन्वेस्टमेंट की ट्रीटीज हैं, यूएई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम हो रहा है, तो उसमें भी भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। पर आप देख रहे हैं कि दुबई में और अबू धाबी में काफी ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं, तो उसकी वजह से जो लोग निवेश करते हैं वो क्या सोचते हैं स्टेबिलिटी के बारे में गल्फ में, और आगे के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सब बातें आगे के लिए हमको इनकी समीक्षा करनी होगी।
जैसा कि चर्चा की शुरुआत में ही आपने बताया था कि ईरान में जो लीडरशिप के लिए जो आगे के सक्सेशन की बात है, तो शायद वहां उन्होंने अगले अपने चार सक्सेसर्स के लेयर्स तैयार किए हुए थे, और आप अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे कि क्योंकि पहले जब हमने देखा है कि दूसरे देशों में जब कुछ इस तरह के हमले हुए हैं या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसे इराक में हमने देखा या लीबिया में हमने देखा है, उन देशों में कहीं भी इसकी तैयारी नहीं थी कि अगर लीडरशिप खत्म हो जाए तो आगे क्या होगा, तो एक अराजकता की स्थिति थी। यहां वो नजर नहीं आ रहा है अभी,
क्योंकि इराक में सिर्फ सदाम हुसैन थे, उसके बाद कोई और दूसरा नेता कौन हो सकता है इसके बारे में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, और लीबिया में भी कर्नल गद्दाफी थे और वो किसी और नए नेता को पनपने नहीं देते थे। ईरान की स्थिति अलग है, हालांकि सुप्रीम लीडर जो है वो 1980 से पहले राष्ट्रपति थे, फिर सुप्रीम लीडर बने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जिसके जरिए वो अपने नेता को चुन सकते हैं, और वहां भी हर 5 साल और 4 साल पे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है। सो उनके लिए मेन चैलेंज ये होगा कि जो लोग सत्ता के खिलाफ हैं, क्या वो अपने को अभी ऑर्गेनाइज करके सत्ता में जो लोग हैं उनको चैलेंज करना चाहेंगे, क्योंकि ईरान में बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिशत है ऐसे व्यक्तियों का जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो सत्ता में है, उनकी आइडियोलॉजी उनकी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे। और एक तरफ से क्योंकि खामेनी की मौत हुई है अटैक में, तो उस वजह से भी कहा जाएगा कि वो एक तरह से शहीद हो गए हैं, उनको समर्थन देना चाहिए, वो जिस तरह के राजनीति या फिलॉसफी को बढ़ाना चाहते थे उसको समर्थन देना। तो हमें देखना होगा कि ईरान के अंदर किस तरह बात आगे बढ़ती है। उसके अलावा एक बात और है, इराक में अमरीकी सैनिक अंदर गए थे देश में और वो रिजीम चेंज कर पाए थे, लीबिया में भी यूरोपियन सैनिक वगैरह आगे थे, आगे बढ़े थे, कर्नल गद्दाफी को पार से हटाने की उन्होंने कोशिश की थी। अभी तक जो संकेत है वो ये है कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजना चाहेगा ईरान में, तो अगर ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजता है, सिर्फ एयर से एक्शन होता है, तो रिजीम चेंज को बाहर से ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं। इसके अलावा हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में था और वहां भी उन्होंने रिजीम चेंज करने की कोशिश की थी, और कहते हैं कि अमेरिका को 20 साल लगा अफगानिस्तान में कि उन्होंने तालिबान रिजीम को हटाकर फिर तालिबान रिजीम को ले आए थे। तो फिर रिजीम चेंज बाहर के फोर्सेस को करना किसी दूसरे ही सोसाइटी में इतना आसान नहीं है, पर देखें बातें आगे कैसे बढ़ती हैं, क्या स्थिति होती है वहां।
जी, आपने बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया, खासकर हमने अफगानिस्तान तो अभी हम सब देख ही रहे हैं। अरुण जी, एक मसला वहां जो दिखाई देता है वो इस्लामिक देशों के बीच और पूरे मध्य पूर्व में जो हालात हैं उसके बीच शिया और सुन्नी देशों का जो फर्क है वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि ईरान इस मामले में थोड़ा अलग थलग था, हालांकि पड़ोस में बहरैन उसके खिलाफ है लेकिन वहां भी 55% शिया है। क्या आगे हम इसमें कुछ इस समीकरण में कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं?
वो देखना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अलग और भी देशों में जो शिया समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, और बहरीन की भी आपने जिक्र किया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी अच्छा प्रतिशत है ऐसे लोगों का जो शिया समुदाय के हैं। तो फूट तो जरूर नजर आ रहा है, मेजोरिटी में शिया है और बाकी अरब कंट्री जो मेजोरिटी में सुन्नी है, लेकिन मेन फर्क ये था कि समय के साथ बाकी अरब देश जो थे वो धीरे धीरे इसराइल के साथ रिश्ते बनाने को तैयार हो रहे थे। अब आपने देखा होगा कि 2020 में एक इब्राहिम अकॉर्ड्स हुआ था जिसके अंतर्गत 5 अरब देशों ने यूएई, कतर, बहरेन, सूडान, इन लोगों ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लिए थे। लेकिन ईरान का पोजीशन हमेशा से ये रहा है कि इसराइल को एग्जिस्ट करने का हक नहीं, और इस वजह से उन्होंने इसराइल के प्रति एक रिजेक्शन का रूट अपनाया है, और इसी वजह से इसराइल हमेशा मानता रहा है कि फिलहाल हमेशा तो ये पिछले 20-30 सालों से कि उनका जो मेन चैलेंज है गल्फ में वो ईरान है, और ईरान ही एक ऐसा देश है जो बिल्कुल इसराइल की स्थापना को नहीं मानता है, ईरान ही एक ऐसा देश है जहां के आर्म्ड फोर्सेस के पास क्षमता है कि इसराइल की थोड़ी टक्कर ले सके, बाकी किसी देश के पास नहीं है। तो वो ईरान को बिल्कुल ही शक की नजर से देखते थे, वो भी एक कारण है कि अब हम अपने को इस स्थिति में पा रहे हैं।
बड़ी शक्तियों की बात करें तो अमेरिका तो इस हमले में सीधे तौर पर शामिल है, और इसके अलावा जब हम रूस और चीन की स्थिति देखें, ये दोनों ही देश ईरान के पक्ष में बोलते रहे हैं पहले से। क्या इस संघर्ष में इनका कहीं से कभी कोई भूमिका हो सकती है इनकी?
तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के साथ रूस और चीन के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी फौज को भेजा जो अंदर गए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकाल कर ले आए और अमेरिका ले गए, तो उस समय रूस और चीन ने कुछ नहीं किया। और आज भी हम देख रहे हैं तो रूस का जो स्टेटमेंट आया है काफी स्ट्रांग, उन्होंने अमेरिका और इसराइल के एक्शन को कंडेम किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने कहा है इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। चाइना ने कहा है कि वो शॉक्ड है यूएस और इसराइल ने क्या किया है, पर उन्होंने कंडेम नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि रूस का मेन फोकस अभी यूक्रेन पे है, और रूस चाहता है कि यूक्रेन के संदर्भ में यूरोप में कोई समझौता हो सके जिसमें अमेरिका के पुश के कारण यूरोपीय देश रूस की डिमांड को अकोमोडेट कर लें। तो ये उनका मेन फोकस रहा है, और वो चाहते हैं किसी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से और अमेरिका से इस मामले में बातचीत आगे बढ़ाएंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि ईरान में जो हो रहा है उसकी वजह से उस प्रोसेस को कोई हानि पहुंचे। दूसरी तरफ जहां चीन का सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो चीन जाएंगे अप्रैल में, चीन के राष्ट्रपति शी आने वाले हैं अमेरिका अक्टूबर में। तो चीन का फोकस रहा है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी के जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका चीन पे लगा रहा है उसको कम किया जाए, वो उसमें अपना मेन इंटरेस्ट देखते हैं। उसके अलावा वो चाहेंगे कि अमेरिका ताइवान को बहुत ज्यादा आर्म्स सप्लाई नहीं करे, तो वो उनकी फोकस होने की वजह से मेरे ख्याल ईरान के मामले में वास्तविक रूप में वो कोई खास कदम नहीं उठाएंगे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी।
इसके अलावा अगर हम तीन देशों के आपसी रिश्तों की बात करें, अगर एक समीकरण है कहीं से, क्योंकि जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं वो भी पांच देशों पर किए हैं, वहां बेशक अमेरिकी अड्डों पर किए हैं, अब उसमें अब सऊदी अरब है, पाकिस्तान की जो अभी हालत है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ भी रहा और पाकिस्तान ने पहले कभी ईरान के साथ भी हमदर्दी जताई है, तो अभी इन तीनों देशों के बीच इस संघर्ष को लेकर समीकरण में कुछ बदलाव दिख सकता है क्या, क्योंकि सऊदी अरब दूसरी तरफ खड़ा है और ईरान दूसरी तरफ खड़ा है?
देखिए, पाकिस्तान तो चाहेगा कि उसके रिश्ते सऊदी अरब ईरान दोनों के साथ अच्छे रहे, लेकिन अगर उनको सऊदी अरब और ईरान के बीच में चुनना हुआ तो वो सऊदी अरब को चुनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी मेजोरिटी सुन्नी कंट्री है, सऊदी अरब मेजोरिटी सुन्नी कंट्री है, उसके अलावा उनके बीच एक डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है। बहुत बहुत कई सालों से जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किलात रहे हैं तो सऊदी अरेबिया ने उनकी मदद की है, फाइनेंशियल मदद की है। जब उनके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, उन्होंने $2 बिलियन या $3 बिलियन उनके बैंक्स में रख दिए थे। जब कोई भी पाकिस्तानी लीडर को उनकी सेना हटा देती थी, जैसे नवाज शरीफ को हटाया, तो जाके वो सऊदी अरेबिया में कई दिनों रहे। तो अगर उनको चुनना हुआ तो वो तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया को चुनेंगे, लेकिन वो तो चाहेंगे कि दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखें।
श्रोताओं, अभी आपने सुना कि इसराइल अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच दुनिया की क्या दशा दिशा है। अरुण सिंह जी, इस समसामयिक विषय पर गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।